میری کوئی مانگ ہے یا نہیں، مجھ پر کوئی دائرہ تو ہے یا نہیں، اس سمبندھ میں اگر وچار کیا جائے تو پرتیک مانو کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ میری کوئی مانگ تو ہے اور مجھ پر کوئی دائرہ بھی ہے. اب آپ وچار کیجئے کہ جس کی کوئی مانگ ہوتی ہے اور جس پر کوئی دائت ہوتا ہے اس کا نام کرن کیا کیا جائے، یعنی کسی طرح کی کوئی ضرورت محسوس کرے اور اپنے پر کوئی ذمہ داری محسوس کرے تو اس کو کیا کہیں گے آپ، کیا نام رکھیں گے اس کا؟ بھائی یہ تو کوئی صادق تو اپنا کہتے ہی ہیں، صادق کہیں گے یا کہیں گے یہ کوئی بڑا ضرورت مند آدمی ہے، پور تو نہیں ہے نا جی، اور جڑ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے. جڑ میں جڑ جو ہوتا ہے اس کو ضرورت بھی نہیں انوبھو ہوتی اور ذمہ داری محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہم کو ضرورت انوبھو ہوتی ہے اور ذمہ داری محسوس ہوتی ہے. کیا ضرورت انوبھو ہوتی ہے؟ کوئی ایسا سکھ ملتا جس میں دکھ نہ ہوتا، اتوا کوئی ایسا جیون ملتا جس میں مرتو نہ ہوتی، اتوا کوئی ایسا سنیوگ ملتا جو بیوگ نہ ہوتا. کیا ایسے سکھ کی مانگ آپ کبھی اپنے من میں کرتے ہیں؟ کیا ایسا سکھ ہو جس میں دکھ نہ ہو؟ کرتے ہیں. ایسا سکھ جس میں دکھ نہ ہو کسی وستو کے دوارا مل سکتا ہے؟
نہیں مل سکتا.
کسی ویکتی کے دوارا مل سکتا ہے؟
جی نہیں.
جی
جی نہیں.
کسی پرستی کے دوارا؟
اس کے دوارا بھی
نہیں مل سکتا. اب یہ دیکھیں یہ سب آپ کا اپنا گیان ہے، یہ کسی کی سکھائی ہوئی بات نہیں. وستو کے دوارا ایسا سکھ نہیں ملتا جس میں دکھ نہ ہو، ویکتی کے دوارا ایسا سکھ نہیں ملتا جس میں دکھ نہ ہو، کسی پرستی وشیش کے دوارا ایسا سکھ نہیں ملتا جس میں دکھ نہ ہو. اس سے یہ سدھ ہوا کہ ہمیں جو سکھ چاہیے وہ شریر اور سنسار کی سہایتا سے نہیں مل سکتا. اور اس کا کیا رائے پانی بھائی؟ یعنی ہمیں جو سکھ چاہیے وہ شریر اور سنسار کی سہایتا سے نہیں مل سکتا. اگر یہ بات آپ ایمانداری سویکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہمارے آپ کے سامنے پرشن نہیں آ جاتا کہ جو کچھ وستو مجھے ملی ہے وہ میرے لیے نہیں ہے؟ کیا رائے جی؟ کیا
آ جاتا
ہے یہ پرشن آ جاتا ہے؟ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ اس کا کیا اپیوگ ہے؟ اپیوگ تو ہے پر وہ اپنے لیے نہیں ہے. تو اس کا ارتھ ہو جاتا ہے کہ بھائی جو اپنے سے ادھک ابھاؤ سے پیڑت ہیں جی ان کے کام آ سکتی ہے. لیکن کیا اس ملی ہوئی وستو یوگتا سامرتھ دوارا کسی کا کے سرو دکھوں کی نوتی ہوتی ہے کیا؟
نہیں ہوتی.
جی
نہیں.
تو سرو دکھوں کی نوتی کے لیے ہمیں کوئی وستو نہیں چاہیے، کوئی یوگتا نہیں چاہیے، کوئی سامرتھ نہیں چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سنسار سے کچھ نہیں چاہیے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے؟ ایسی چیز سنسار میں نہیں ہے جو میرے لیے ہو. جی ہے کیا؟
نہیں.
اب دیکھیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ میرے کہنے سے مان لیں. کیا آپ کو سوئم گیان کے پرکاش میں ایسا معلوم نہیں ہوتا؟ جی
معلوم.
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنسار میں میرے لیے کچھ نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کو معلوم ہوتی ہے تو پھر اچھا ہونے میں کیا تکلیف ہے؟ اب ذرا اچھا ہو کر دیکھیے تو آپ کو صاف انوبھو ہو جائے گا کہ اچھا ہوتے ہی نہ تو پراھینتا رہتی ہے اور نہ اشانتی رہتی ہے. انوبھو تو کرو ذرا.
نہیں
اچھا اب دیکھیے اچھا ہونے سے ہی پراھینتا اور اشانتی مٹی. اب پراھینتا اشانتی مٹنے سے کیا پراپت ہوگا اسے آپ سوئم انوبھو کریں گے کوئی سکھائے گا؟
سوئم انوبھو
جی
سوئم کریں گے.
سوئم انوبھو کرو تو پہلے اس بات کا انوبھو کرو کہ پراھینتا اور اشانتی نہ رہنے پر جیون میں کیا کیسا لگتا ہے. یعنی اس کو آپ وانی سے کیسے کہہ سکتے ہیں جی؟ کہہ سکتے ہیں؟
نہیں.
یعنی اس کو سمجھا سکتے ہیں ہم کو؟
نہیں
جی نہیں سمجھا سکتے. لیکن سوئم پراپت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
جی
کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ہو کر کے شانتی اور سوادھینتا کیوں نہیں پراپت کر سکتے یا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہم کیا بتائیں, کبھی کبھی ہم کو شریر دھرم جو ہے وہ ستانے لگتا ہے. پیاس لگی, بھوک لگی, نیند لگی.
بالکل
اچھا یہ جو شریر دھرم ہم کو ستانے لگتا ہے تو شریر اور میں ایک ہے کہ شریر آپ کو ملا ہوا ہے؟
ملا ہوا.
تو ملے ہوئے کے لیے آپ کو سنسار کی ضرورت ہوتی ہے کیا بھائی؟ ابھی کہہ رہا ہے تمہاری جی تمہارا جا رہے ہو نا اس لیے بدائی ہے تمہاری. ملے ہوئے کے لیے سنسار کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, ملے ہوئے کے لیے ہمیں سنسار کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیا ہماری سنسار کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی؟ اچھا سنسار کو ہماری کیا ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں سنسار کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس پر سوچو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو شریر کے نرواہ کے لیے کچھ چاہیے اور سنسار ہم کو ایماندار, ادار, برائی رہت, سوادھین, اچھا, پریمی دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو جو سنسار ہم کو ہم سے جو آشا رکھتا ہے وہ ہمارے لیے سمبھو ہے یا اسمبھو ہے؟
سمبھو ہے.
اگر ہم اچھا ہو کر سوادھین ہو کر ادھار ہو کر سبھی کے پرتی سدبھاو رکھ کر رہیں تو سنسار ہم کو ناپسند نہیں کرے گا اور جب سنسار ناپسند نہیں کرے گا تو وہ شریر ہمارا رہا کہ سنسار کا رہا؟ جی لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں, ہم مان لیتے ہمارا ہے. شریر ہمارا نہیں ہے سنسار کا ہے, اتہ ہم شریر کی ساری ضرورتوں کو سنسار کی مرضی پر چھوڑ دیں گے اور شریر کے دوارا کسی کو کسی پرکار کی چھتی نہیں پہنچائیں گے, اپت یتھا شکتی سہیوگ دیں گے. ان تین باتوں کے ماننے میں یا پورا کرنے میں ہم کو کیا کٹھنائی ہے؟ بولو بھائی کون کون سی تین بات بتائیں, بتانا ذرا. کیا نہیں سنے یاد یار؟ سنتے نہیں ہو غور سے. ہم شریر کے دوارا کسی کو چھتی نہیں پہنچائیں گے, शरीर की सारी आवश्यकताएं संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे, हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे। ये तीन बातें क्या हम नहीं पूरी कर सकते? हम शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, सुनाई देता है? हैं? हम शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे और यथाशक्ति सहयोग देंगे, इतना ही तो काम है ना। जिसने शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ दिया वो अचा हो जाएगा कि नहीं? है? वो निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं? वो निर्भय हो जाएगा कि नहीं? यही बात हमारे गुरु महाराज ने कही कि बेटा, जब तुम आजाद हो जाओगे, स्वाधीन हो जाओगे, अचा हो जाओगे, तो सृष्टि इतनी उदार है कि तुम्हारे शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लालायत रहेगी। सृष्टि व्यक्ति नहीं। आज क्या कारण है, आज हमारी क्या दशा हो गई कि हमने पराधीनता को पसंद कर लिया? उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम सृष्टि से लालायत रहते हैं कि हमारी जरूरत पूरा कर दे। अगर हम स्वाधीनता पसंद कर लें, अगर हम मनवाणी कर्म से बुराई रहित हो जाएं, अगर हम अकिंचन और अचाह अनुभव करें, तो शरीर संसार का हो जाएगा और जो जिसकी चीज होती है उसका ध्यान नहीं रखता है क्या? जी क्या उसका ध्यान रखेगा? तो शरीर संसार शरीर की का ध्यान रखे, संसार शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए लालायत रहे, ये कब होगा?
जब अचा हो जाएंगे।
जब हम शरीर के द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और शरीर की जरूरत को आप तो यथाशक्ति सहयोग देंगे। भाई अगर आप में कुछ करने की शक्ति है तो या तो आप हानि पहुंचा सकते हैं या किसी के प्रति सहयोग कर सकते हैं। हानि पहुंचाएंगे ही नहीं, यथासंभव सहयोग देंगे शरीर के द्वारा। किसको? संसार को। और इतनी उदारता पूर्वक देंगे कि शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे। सेवक में और नौकर में फर्क क्या होता है? सेवक सेवा करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं, और नौकर कुछ चाहता है तब कुछ करता है। एक बात तो बताओ, नौकर जब कुछ चाहता है कुछ करता है तो क्या उसमें और सेवक के जीवन में फर्क होगा कि नहीं होगा? जी सेवक सहयोग देगा और अपना अधिकार नहीं मानेगा और सहयोग देगा। अगर ये नीति हम मान लें कि भाई संसार के साथ जो भी हम सहयोग कर सकते हैं देते रहें और अपना अधिकार न माने, तो हम को कभी क्रोध आएगा? जी कोई हमें राग रह जाएगा? और जब हम राग और क्रोध से रहित हो जाएंगे तो योग और स्मृति प्राप्त नहीं होगी क्या? क्या रहा है अवधेश्वर भाई बताओ। तो पहला कदम क्या हुआ? हम शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए, अपितु तो यथाशक्ति सहयोग दें, ये ध्वन, और उस सहयोग के बदले में अपना कोई अधिकार न माने। अगर इन तीन बातों को हम मान लेते हैं कि किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, यथाशक्ति सहयोग देते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो हमें योग और स्मृति प्राप्त हो जाएगी। योग माने जिस जीवन की मांग है, जो हमारी जरूरत है, उसकी पूर्ति हो जाएगी उसका बोध हो जाएगा, उससे हमारी एकता हो जाएगी, उसमें हमारा प्रेम हो जाएगा। यानी हम योग के योग पूर्वक, बोध पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस जीवन से अभिन्न हो जाएंगे जिस जीवन की मांग है। योग पूर्वक, बोध पूर्वक और प्रेम पूर्वक की भाषा समझ आती है। तो अचाह होने से, बुराई रहित होने से, इच्छाशक्ति सहयोग देने से हमें योग बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। अब ये प्रोग्राम कब पूरा करोगे भाई? सबसे पहली चीज क्या होगी बोलो?
सबसे पहली चीज होगी इसी को पूरा करना।
इसको पूरा करना है, इसमें तीन बातें हैं, तीनों पहले कौन सी पूरी करोगे?
संसार को क्षति न
है,
संसार को
क्षति न पहुंचाए। कभी किसी का बुरा न चाहें, कभी किसी के साथ बुराई न करें, कभी किसी को बुरा न समझें। ये पहली बात होगी। जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो बुराई नहीं करता है, जो किसी को बुरा नहीं समझता है, यानी हमको हक नहीं है किसी को बुरा समझने का। ये सारक की भाषा बोल रहा हूँ, राजनीति बदलेगा ना कि बुरे को बुरा क्यों ना समझे। हमें हक नहीं है किसी बुरे को बुरा समझने का। क्यों? अगर हम किसी को बुरा समझेंगे तो हमारे मन में द्वेष पैदा हुआ कि नहीं? जी, जब द्वेष की अग्नि जलेगी तो प्रेम उदय होगा क्या? जी, तो हमारे हृदय में द्वेष की उत्पत्ति न हो, इसके लिए हमें ये व्रत लेना पड़ेगा कि हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम किसी साथ बुराई नहीं करेंगे। बुराई न करना पहली बात, बुरा न चाहना दूसरी बात, बुरा न समझना आखिरी बात। अगर इन तीनों प्रकार की बुराई हमारे जीवन में से निकल जाए, हम निकाल दें, छोड़ दें, कि हमें स्वाधीनता है कि नहीं भाई? हम ये नहीं कहते कोई बुरा है या नहीं है भाई, हमें हक नहीं है किसी को, हमें हक नहीं है समझने का, बुरा समझने का। जी, हक है क्या? जी
नहीं।
बुरा समझने का हमको हक नहीं है। अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं, किसी का बुरा चाहने का हमें हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा कोई बुरा न चाहे, किसी के साथ बुराई करने का हमें कोई हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कोई हमारे साथ बुराई न करे। तो ये तीनों बातें हमको ज्ञान के द्वारा स्वतः प्राप्त हैं या नहीं है? जी, अब प्राप्त को अपना लेना, प्राप्त का उपयोग कर लेना, प्राप्त को स्वीकार कर लेना, यही हमारा यही सत्संग है। तो ये पहली बात हुई। उसका फल क्या होगा कि जब हम मनवाणी कर्म से बुराई रहित हो जाएंगे तो अपने आप शरीर के द्वारा किसी न किसी अंश में भलाई होती रहेगी, सद्भाव और सहयोग होता रहेगा, और सद्भाव और सहयोग से चित्त शुद्ध होगा, पहले शुद्ध होगा, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो शांत होगा। अचाव होने से चित्त शांत होता है और सद्भाव तथा सहयोग से चित्त शुद्ध होता है। सहयोग और सद्भाव तथा अचाव होना, क्या ये जीवन का सत्य नहीं है? बोलो भाई।
है।
अब इस सत्य को स्वीकार करने से चित्त शुद्ध और शांत होता है। जब चित्त सर्वांश में शुद्ध हो जाए और संपूर्ण रूप से शांत हो जाए, उसी को योग कहते हैं। अगर ये बात आपको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए, तो योग की प्राप्ति में कोई भी भाई, कोई भी बहन कभी भी पराधीन है क्या? जी? अच्छा, जो योग की प्राप्ति में जब आप स्वाधीन हैं, तो जिसके साथ हमारा योग होगा, क्या उसका हमें बोध नहीं होगा? क्या उसमें हमारा प्रेम नहीं होगा? जी? तो योग ही बोध और प्रेम के रूप में प्रकट हो जाएगा। बोध अध्यात्म जीवन, योग भौतिक जीवन की विकास की चरम सीमा, और प्रेम आस्तिक जीवन। देखो, ये जो योग विज्ञान है, ये असल में भौतिक विज्ञान है, क्योंकि चित्त के शुद्ध और शांत का नाम योग है। क्यों भाई? अब ये चित्त प्राकृतिक है क्या दैवी है? अरे सृष्टि जिससे बनी है उसी से चित्त बना है कि चित्त किसी और चीज से बना है? ये तो भौतिक विकास की चरम सीमा योग है और अध्यात्म विकास की चरम सीमा बोध है और आस्तिक विकास की चरम सीमा प्रेम है। और हमें योग भी चाहिए, हमें बोध भी चाहिए, हमें प्रेम भी चाहिए। इस दृष्टि से ये बात निर्विवाद सिद्ध है कि हम हमारी जो ये मांग है, जब हम अपने दायित्व को पूरा करेंगे पूरी मांग पूरी हो जाएगी। इसलिए मानव का एक नाम साधक भी है, मानव का एक नाम साधक भी है, साधक, क्योंकि दायित्व पूरा करेंगे मांग पूरी हो जाएगी। और दायित्व जो हमें पूरा करना है वो ज्ञान विरोधी है क्या? बोलो जी, सामर्थ्य विरोधी है क्या जी? तो जो दायित्व ज्ञान विरोधी नहीं है, सामर्थ्य विरोधी नहीं है, अच्छा उसे हम वर्तमान में पूरा कर सकते हैं कि नहीं जी? क्या कर सकते हैं? तो दायित्व पूरा करने से मांग पूरी होती है, ये सिद्धांत आपको कैसा मालूम होता है? दायित्व पूरा कर सकते हैं, मांग पूरी हो सकती है, दायित्व पूरा कर सकते हैं, मांग पूरी हो सकती है। अगर ये बात हम अच्छी तरह से स्वीकार कर लें और जीवन के सत्य के रूप में स्वीकार कर लें और अपनी अपने अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लें, तो हम सभी बड़ी सुगमता पूर्वक, हम सभी मतलब मानव मात्र बड़ी सुगमता पूर्वक उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन कभी भी किसी भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर को मिला है, वो जीवन आपको मिल सकता है। केवल इन दो बातों से, दायित्व पूरा कर दें मांग पूरी हो जाएगी। अब दायित्व पूरा करने का प्रश्न हमारे सामने मौलिक प्रश्न है और दायित्व हम पर वही है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। अब बताओ उस जीवन से, जिस जीवन को पा करके कुछ पाना शेष नहीं रहता, क्या हमें आपको निराश होना चाहिए? क्या
नहीं होना चाहिए? नहीं।
इसलिए मानव शासन प्रणाली बताया कि मानव को नित्य जीवन से, रसरूप जीवन से, स्वाधीन जीवन से, अमर जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कोई चीज ऐसी है जिसकी आशा करनी चाहिए जी? और कोई चीज आशा की है नहीं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सत्य को स्वीकार करने मात्र से हमारी आपकी मांग पूरी हो सकती है। और सत्य उसे नहीं कहते जिसे आप स्वयं अनुभव नहीं कर सकते। देखो, सत्य के लिए प्रमाण अपेक्षित नहीं है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। क्या? कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा मुझे अविनाशी जीवन नहीं मिल सका, न मिल सकता है, न मिलेगा है? मुझे जो चाहिए वो मिली हुई वस्तु के द्वारा नहीं मिलेगा, मिली हुई योग्यता के द्वारा। पराधीनता जनित सुख नहीं भोगना है, या हमें पराधीनता जनित सुख पसंद नहीं है, तो शरीर के नाश होने से मेरा क्या नाश हो जाएगा? क्या राय? अच्छा, और दूसरे लोग भी अगर सत्य को स्वीकार करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि शरण की वजह से हमको बड़ा सुविधा मिलती है, तो तुम सुविधा देना सीखो दूसरों को। अगर शरणानंद ने तुम्हें सुविधा दी है तो सुविधा दो, आदर दिया है तो आदर दो, प्यार दिया है तो प्यार दो। तो वो प्यार के आधार पर जब तुम कहते हो कि शरण का शरीर नाश नहीं होना चाहिए, तो वो प्यार का महत्व है या शरीर का महत्व है? अगर आपने भी इन तीनों बातों को मान लिया कि मैं दूसरों को आदर दूंगा, प्यार दूंगा जी, तो आप और सामने एक हो गए कि दो हो गए? जब एक हो गए तो आदर देने की भावना, प्यार देने की भावना, सहयोग देने की भावना, ये कभी नाश होगी? बोलो, ये तो सत्य है, ये तो कभी नाश नहीं होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हमको सचमुच कोई आदमी ऐसा मिला है कि जिसने हमको आदर दिया है, प्यार दिया है, सहयोग दिया है, हमारे प्रति सद्भाव रखा है, तो इन बातों को हम अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते? एक दिन घटना सुनाया आपको, ट्रेन में जा रहे थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल स्कूल बैठे हुए थे, उनकी 9 साल की भतीजी, भाई की लड़की मर गई थी, उसके मुंह से आबद्ध बहुत दुखी थे, और ट्रेन में प्रसंग बस उस लड़की के गुणगान कर रहे थे, और गुणगान करते करते यहां तक उन्होंने कहा कि एक दफे मैं बीमार हो गया तो बच्ची मेरे चारों ओर घूमी और कहा हे भगवान हमारे चाचा जी अच्छे हो जाएं, मैं मर जाऊं। किसी बादशाह की भी बात है,
बाबर
की है, मैं मर जाऊं। तो हमने उनको बहुत दुखी देखा, तो मैंने पूछा कि पंडित जी अगर वो लड़की जिंदा रहती, बड़ी हो जाती, उसका शादी करते कि नहीं? कि जरूर करते। तो आपसे अलग होती कि नहीं? जरूर होती। अगर लड़की के गुण आपको पसंद है तो उन्हें आप घर कर लीजिए, और ये तो आप जानते हैं कि लड़की आपसे अलग होती, तो वो चीज आपसे अलग हुई है जो अलग होती है, क्या उसके गुण अलग हुए हैं? तो किसके लिए रोते हैं आप? उस चीज के लिए रोते हैं जो अलग होगी ही, गुण तो अलग होते नहीं। तो बोले इस तरह से मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा पंडित जी अगर आपसे पूछा जाए कि वो दुख का मूल है, तो बोले इस पर किताब लिख सकता हूं, लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन क्या आपने अनुभव किया कि वो दुख का मूल है? एकदम शांत और गंभीर हो गए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, न अपने शरीर छूटने का दुख हमको होना चाहिए, न हमारे शरीर छूटने का दुख किसी और को होना चाहिए, क्योंकि जिन कारणों से तुम इस शरीर को पसंद करते थे वो बातें तो आप अपने में भी रख सकते हो ना, क्या राय जी? तो मैं आपसे पूछता हूं कि शरीर गुरु है कि जीवन का जो सत्य है वो गुरु तत्व है? तो जीवन के सत्य को आप स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? तो सदा सदा के लिए अपने गुरु से अभिन्न हो सकते हो कि नहीं? क्या तो अगर ये बात आपको जचे रुचे पसंद आए तो थोड़ा मनन कर लिया जाए। हमारे जितने पथ प्रदर्शक हुए हैं, रहनुमा कहते हैं क्या कहते हैं,
रहनुमा
हुए हैं, उनमें जो खूबियां थी, उनमें जो सत्य था, क्या वो सत्य आज नहीं है? क्या हम अपने पथ प्रदर्शकों के सत्य को अपना नहीं सकते?
अपना
सकते हैं। तो मानव सत्संग ने मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया है कि भैया तुम सत्य को स्वीकार करो, और सत्य कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसे तुम नहीं जानते हो। उदार होना सत्य है, अचाव होना सत्य है, आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है। बोले आत्मीयता किससे स्वीकार करें? क्योंकि जिसका प्रेम आपको अभिष्ट हो, जिसका प्रेम आपको प्राप्त करना हो, उसकी आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है, और अचाव होना सत्य है, उदार होना सत्य है, बुराई रहित होना सत्य है। जो जीवन का सत्य है उसे आप स्वीकार करें, इसी का नाम है सत्संग। और इस सत्संग से ही आपको साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी मांग पूरी हो जाएगी। सत्य को स्वीकार करना आपकी जिम्मेदारी है और मांग पूरा होना स्वाभाविक है। सत्य को स्वीकार करने से मांग पूरी हो जाती है। सत्य को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। और सत्य की चर्चा करें, सत्य का चिंतन करें, किसी अंश में सत्य कार्य भी करें और सर्वांश में सत्य को स्वीकार न करें तो हमारा काम बनेगा
नहीं,
नहीं। इसलिए महानुभाव हम सभी को मानव होने के नाते साधक होने के नाते सत्य को सर्वांश में सदा के लिए अपने द्वारा अभी स्वीकार करना है। ये आज की चर्चा का सार सर्वस्व है। तो जिस गुरु ने हमें सत्य को स्वीकार करने की स्वाधीनता दी है उस प्रभु की महिमा गाएं और सत्य को स्वीकार कर सदा सदा के लिए कृतकृत हो जाएं। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्यार। अब संसार को नापसंद करने में आप स्वाधीन है कि पराधीन है? ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में भी आप स्वाधीन है। जो जो साधक संसार को नापसंद करने में स्वाधीन है वही साधक परमात्मा की प्राप्ति में स्वाधीन है। अब कठिनाई क्या होती है कि हम संसार को पसंद करते रहते हैं और परमात्मा से मिलना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं होगा। संसार को पसंद करते हुए परमात्मा से मिलना संभव नहीं। हाँ एक बात है कि संसार के द्वारा हमें जो वस्तु प्राप्त है वो संसार की सेवा में लगा दें, सामर्थ्य प्राप्त है वो भी सेवा में लगा दें, योग्यता प्राप्त है वो भी सेवा में लगा दें। अब हमसे गलती क्या होती है कि सेवा तो हम करते नहीं, न वस्तु के द्वारा न योग्यता के द्वारा न सामर्थ्य के द्वारा न सद्भाव के द्वारा सेवा करते नहीं। और क्या चाहते हैं कि संसार हमको नापसंद हो जाए। सो कैसे होगा भाई, सेवा नहीं करोगे तो सेवा को उल्टा मान लो क्या होता है, भोग। तो भोग करोगे, अगर सेवा नहीं करोगे तो भोग करोगे। अगर मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य को सेवा सामग्री नहीं बनाते हो तो भोग सामग्री बन जाएगी, और भोग करोगे तो मोह और आसक्ति में आबद्ध हो जाओगे। क्या कारण है कि हमारे जीवन का मोह नाश नहीं होता, आसक्ति नाश नहीं होती? इसलिए सेवा नहीं करते हैं, भोग करते हैं। भोग होता है ममता से, कामना से, तादात्म से, इनके बिना भोग की सिद्धि नहीं होती। यदि हम सेवा करना पसंद करें तो सेवा होगी प्राप्त वस्तु से, अप्राप्त से नहीं, प्राप्त से, प्राप्त सामर्थ्य से, प्राप्त योग्यता से, प्राप्त की ही सेवा होती है। क्या है अप्राप्त की सेवा होती है क्या, और प्राप्त के द्वारा होती है। तो जो जो प्राप्त है उस जो जो वस्तु प्राप्त है, जो जो व्यक्ति प्राप्त है, जो जो योग्यता सामर्थ्य प्राप्त है उसके द्वारा प्राप्त व्यक्तियों की सेवा कीजिए। अथवा प्राप्त परमात्मा को पसंद कीजिए, प्राप्त की सेवा कीजिए और प्राप्त ही परमात्मा को पसंद कीजिए। तो जो संसार में प्राप्त मालूम होता है तो वो तो आपका सेव हो गया, और परमात्मा जो दिखाई नहीं देता है वो आपका प्रिय हो गया। तो परमात्मा हमारा प्रेम पात्र है, संसार हमारा सेवा का सेव्य है। तो संसार की सेवा और परमात्मा का प्रेम अगर आपको पसंद आ जाए तो अभाव का अभाव हो सकता है। परमात्मा का प्रेम और संसार की सेवा आपको पसंद आ जाए, यानी संसार। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, देखिए हमसे गलती क्या होती है, बड़े बड़े लोगों से होती है। क्या करते हैं कि संसार की सेवा नहीं पसंद करते, संसार की सहायता से शरीर को सुखपूर्वक रखना पसंद करते हैं। गंभीरता सोचना थी, संसार की सहायता से हम शरीर हमारा भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, नींद लगे तो बिस्तर मिल जाए, यानी जो जो शरीर की जरूरत पैदा हो वो पूरी होती जाए इसको हम पसंद करते हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर की सारी जरूरत कभी पूरी नहीं होती। ये कभी नहीं होगा जैसा आप अनुभव करें कि हमेशा भूख लगती रहे और हमेशा ही भोजन मिलता रहे, हमेशा प्यास लगती रहे और हमेशा ही पानी मिलता रहे। हमेशा ही कामना उत्पन्न होती रहे और पूरी भी होती रहे, ऐसा होता है कभी? क्या रहे
मैं?
यही कारण है कि आज का साधक भटक रहा है, बड़ी बुरी तरह से भटक रहा है। इस बात के लिए कि साहब किसी तरह से हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, मान के रूप में, भोग के रूप में, जरूरत के रूप में, इसलिए भटक रहा है। तो जीवन का सत्य में ये प्रेरणा देता है कि शरीर की आवश्यकता को समाज की मर्जी पर छोड़ दो और शरीर के द्वारा यथासंभव समाज की सेवा करो। शरीर के द्वारा यथाशक्ति सेवा करते रहो, शरीर की आवश्यकता को समाज की मर्जी पर छोड़ दो। अगर समाज शरीर की आवश्यकता को पूरा न करे तो तुम्हें कोई घाटा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर तुम्हारे साथ सदैव रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या घाटा पड़ेगा? किसी सेवा प्राण शरीर की समाज अगर परवाह नहीं करता है तो समाज की क्षति होती है कि उस सेवक की क्षति होती है? क्या है?
सेवा करने में बड़ी भूमिका।
अरे झंझट क्यों? दूसरी बार बात सुन ले, तू बड़ा भारी दार्शनिक हो गया है, मानसिक रोगी बना बैठा कर लिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सेवा करने में झंझट आते हैं तो कौन सी प्रवृत्ति ऐसी जो झंझट है? सेवा ने प्रवृत्ति प्रवृत्ति और दूसरे हित के लिए, तुम अपने सुख के लिए प्रवृत्ति करते हो, दूसरे हित के लिए नहीं करते। तो झंझट तुम्हारी बेवकूफी में है कि सेवा में? मैं आपसे बड़ी भारी नम्रता के साथ ये बात निवेदन करना चाहता हूँ। इस पर लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी रुचि पूर्ति का साधन शरीर है, वो कभी भी उनको शांति नहीं मिलती। शरीर है, दूसरे की उस रुचि को पूरा करो जो तुम्हारे ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार है। सेवा का मतलब क्या है? कि जो तुम्हारी सामर्थ्य के अनुरूप है वो सेवा करना है, जो तुम्हारे ज्ञान के अनुसार है सेवा करना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने में क्या कठिनाई है? कोई ईमानदार नहीं कह सकता, कोई ईमानदार आदमी नहीं कह सकता कि तुमको खाली उतना ही करना है जो तुम्हारे ज्ञान के अनुसार हो, या वही करना है जो तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार हो। मैं तो आपसे ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई, गंभीरता से इस बात पर सोचो कि अगर हम सामर्थ्य विरोधी काम करने से इनकार नहीं करते हैं, अगर हम ज्ञान विरोधी काम करने से इनकार नहीं करते हैं, ज्ञान के अनुरूप जो कार्य उसके करने से इनकार नहीं करते हैं, तो कोई नाराज नहीं होता। नाराज कब होता है? सामर्थ्य है और इनकार कर दे, ज्ञान के अनुसार है और इनकार कर दे। सोने के लिए तो तुमको कमरा चाहिए लेकिन आश्रम नहीं चाहिए। फिर यहाँ से निकलेंगे तब उन्हें किसी और के बनाए हुए घर में घुसेंगे। तो संसार में शरीर की आवश्यकता के लिए तो आपको संसार चाहिए, पर संसार के काम आने के लिए तुम्हारी शादी पड़ती है। सारी जवानी चल चल के बर्बाद करोगे, टुकड़े मांग मांग कर बर्बाद करोगे, काम नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे। ये जीवन का सत्य नहीं है। जीवन का सत्य यह है, काम करो कुछ मत चाहो, काम करो कुछ मत चाहो। तब क्या होता है? तब तुम्हारे शारीरिक आवश्यकता सम्मान पूर्वक पूरी होती है। आज हमको आगरा जरूरत पड़ जाए तो मुझसे मांगनी पड़ती है। राम सुभाष नारायण ने चतुर्मास क्या किया, सेठ ने पूरे 3 महीने के लिए मोटर दे दी, नया बना हुआ बंगला भी दे दिया रहने के लिए, मोटर भी दे दी और साधुओं की भिक्षा का इंतजाम भी कर दिया। सेठों ने क्यों कर दिया? इसलिए कि वो सेठों की जरूरत को ये यहाँ आए, केवल अपनी जरूरत को लेकर नहीं आए। और तुम अपनी जरूरत को लेकर यहाँ आए, समा आश्रम की जरूरत लेकर नहीं आए, इसलिए तुम्हें आदर नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। रोटी तो मिले, 8 वर्ष तक तुमने खाई रोटी। तुम्हें आपसे ये नम्र निवेदन करना हूँ कि ये भ्रम निकाल दो कि तुम रुचि पूर्ति करते रहो और तुमको शांति मिल जाए, ये किसी काल में नहीं मिलेगी, आज तक किसी को नहीं मिली। शांति उसी को मिली है जो दूसरे के काम आया है, अथवा जो अचार हो गया है, अथवा जो शरणागत हो गया है। चाहे तो प्रभु की शरणागत होकर प्रभु के नाते सेवा करो, चाहे अचार होकर आत्मा के नाते सेवा करो, चाहे उदार होकर जगत के नाते सेवा करो। سیوا کرنے سے جان بچے گی نہیں. کتنا ہی بھٹک لو کتنا ہی بھٹک لو, انوبھو کر لو بھٹک لو دیکھ لو, جان نہیں بچے گی. ہاں سکھ کی راستہ دکھ کے بھے میں بندے رہو گے سیوا نہیں کرو گے تو, اگر سیوا کرو گے تو سکھ کی راستہ بھی ناش ہو جائے گی, دکھ کا بھے بھی ناش ہو جائے گا, پرماتما بھی مل جائے گا, شانتی بھی مل جائے گی, مکتی بھی مل جائے گی, بھکتی بھی مل جائے گی. یہ جیون کا سکتے ہے.
ابھی آپ نے پر پیڑا سے دروی بھوت ہردے سے مشرت سنت بانی میں منشیہ کے ویکتتو کو سمپورنتا سے پرکاشت کرنے والے چرنتن ستیہ کو سنا. ویکتی کے کلیان ایوم سندر سماج کے نرمان سمبندھی کوئی ایسی سمسیا نہیں ہے کہ جس کا سمادھان پرستت سنت بانی کے انوسرن سے نہ ہو جائے. شری مہاراج جی کے انوسار मानव जीवन का सुंदरतम चित्र यह है कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए, हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए. इस आदर्श को उन्होंने अपने जीवन से हमें दर्शाया और अपने महाप्रयाण से भी यही पाठ पढ़ाया. जब उन्हें यह विदित हो गया कि उनका शरीर अब समाज की सेवा के योग्य नहीं रह गया, तब उस शरीर को त्यागने का समय तिथि एवं विधि भीतर ही भीतर निश्चित कर लिया और कहने लगे, मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर के नाश से मुझे दुख नहीं होगा, मैं बहुत आनंद में रहूंगा. बीच की यह उपाधि हट जाएगी तो भक्त और भगवान के अनंत मिलन का अनंत आनंद रहेगा. इसलिए इस शरीर के छूटने पर शोक सभाएं नहीं होंगी, सत्संग समारोह होंगे, शरीर की बैकुंठी नहीं सजेगी, प्रोसेशन नहीं निकलेगा. मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूँ, तुम लोग विधि विधान में मत पड़ना, कुटी में से पार्थिव शरीर को निकालकर आंगन में रखकर भस्म कर देना. शरीर की भस्मी मिट्टी में मिला दी जाएगी, खाद बन जाएगा, घास उगेगी, पशुओं का चारा बनेगा. समाधि स्थल पर कोई चिन्ह नहीं बनेगा, फूल नहीं चढ़ेगा. साधना का नाश नहीं होता है, अतः सेवा त्याग प्रेम का व्रत विभू होकर जन समाज में फैलेगा. इस शरीर की सेवा में जिसकी रुचि है वह मानव सेवा संघ की सेवा करे, संघ मेरा शरीर है और वह स्थायी रहेगा. जो लोग मुझे प्यार करते हैं वे भगवान को प्यार करें, क्योंकि भगवत प्रेम मेरा जीवन है. जो उपदेश था भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं. सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. व्यक्त जगत की विविधता के भीतर अव्यक्त नित्य प्रेम तत्व के एकत्व के दर्शी संत ने कहा, कोई गैर नहीं है, यह धर्म का मंत्र है. कोई और नहीं है, यह प्रेम का मंत्र है. प्रिय साधको, इस सत्य को मानो, सर्वसमर्थ प्रभु तुम्हारे अपने हैं, उनके होकर रहो, उन्हीं का काम करो, और यह सदगुरु का आशीर्वचन है कि उन्हीं में तुम्हारा नित्य वास होगा. अमृतमयी वाणी को सुनाकर योग स्थित होकर नाशवान शरीर को स्वेच्छा से त्याग करके उन ब्रह्मनिष्ठ ने जीने और मरकर अमर होने की कला हमें सिखाई. उन संत शिरोमणि के चरणों में हमारा शत शत नमन. अब सर्वहितकारी प्रार्थना करें. मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें. एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए. ओम शांति शांति शांति।